तो मैम पहले आप मुझे अपने बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आपका रोल क्या है डाइट पे, आप पहले हमें वो बता दीजिए।
अगर मैम अगर आप स्पेसिफाई कर पाए कि आपकी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और वो कितना टाइम।
हाँ, मैं डाइट में एज ए सीनियर लेक्चरर पद पे हूँ और मेरे पास जो डिपार्टमेंट है वो प्री सर्विस का है।
अच्छा।
प्री सर्विस में हमारे पास डीएलएड का जो कोर्स है, बच्चों की क्लासेस होना और जो हमारे ट्रेनीज हैं स्टूडेंट्स उनकी प्रॉपर क्लासेस होना, उनका जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग देना, फिर उनकी जो जो एग्ज़ाम लेना, इंटरनल एग्ज़ाम एक्सटर्नल एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना, वो सारा इसके अंदर प्रोसेस होता है।
अच्छा, तो मैम ये सब जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो मैम किस तरह की सपोर्ट आपको मिलती है डाइट से? वो लेक्चरर्स हो सकते हैं, प्रिंसिपल सर हो सकते हैं, ये जो एनजीओ है यहाँ पे वो हो सकते हैं। हाँ, ये ड्यूटीज़ करने में किस तरह की सपोर्ट मिलती है आपको?
जैसे हमारी टीम होती है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसके अंडर में हम कौन किस लेक्चरर्स को रखना चाह रहे हैं, किन किन लेक्चरर्स को रखना चाह रहे हैं, फिर वो पर्टिकुलर टीम उस जो भी वर्क्स हैं उस पर काम करती है।
जी मैम,
एक तो ये प्रोसेस है। प्रिंसिपल सर जो वाइस प्रिंसिपल सर हैं वो हमारे मतलब हमें जो जो हमें एक्शंस लेने हैं या क्या क्या हमें काम देना है, क्या रोल है, वो सारे वो हमें जो ड्यूटीज़ हैं वो देते हैं और फिर हमें उसको फुलफिल करना होता है। ये है
मैम। तो एस सी आर टी से आपका किसी लेवल पे इंटरेक्शन होता है या फिर प्रिंसिपल सर ही सीधे इन्वॉल्व रहते
हैं? नहीं, कभी कभी हम लोगों का भी होता है। अच्छा, जैसे कुछ काम है कोई एस सी आर टी से, मेन तो प्रिंसिपल सर का होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही टाइम दो तीन मीटिंग्स हों, जैसे प्रिंसिपल सर की विकास भवन में या डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग हो तो वहाँ पे बिजी हैं, तो हमारा उनकी एब्सेंस में या तो हम उस एस सी आर टी की कोई ऑनलाइन मीटिंग है या कुछ इस तरह का वर्क है तो हम देख सकते हैं। दूसरी चीज़ एस सी आर टी के साथ ये भी रहता है कि कुछ इन्फॉर्मेशंस अगर जानी है तो एस सी आर टी हम लोगों को भी कॉन्टेक्ट करती है, तो उस तरीके से हम
एससीआरटी में। मैम कोई मतलब सर्टेन पोस्ट हैं जिनसे आप बात करते हैं या फिर वो सीधा निदेशक के नाम से ही बात होती
है? नहीं नहीं, सर्टेन पोस्ट हैं। जैसे अगर कोई स्पेशली कोई डेटा चाहिए उन्हें, जैसे एक जो मेरे साथ जिस तरह से हुआ है, जैसे कोर्ट केसेस को लेके उन्हें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उसी टाइम चाहिए होती है, बहुत शॉर्ट पीरियड होता है कि आपको एक दिन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, अगले दिन आपकी हियरिंग है, तो उन्होंने फ़ोन किया कि मैडम ये डेटा चाहिए हमें और आप भिजवा दीजिए, तो वो आती है वहाँ से। जैसे एस सी आर टी पे सहायक उप शिक्षा निदेशक हैं इस तरह से, तो उनकी कॉल आती है, तो देन वी विल डू दैट।
बी आर सी से किस लेवल पे बातचीत रहती है, किन किन लेवल्स पे?
अच्छा, बी आर सी जैसे हमारी मंथली मीटिंग होती है डाइट में, तो मंथली मीटिंग में जितने भी ए आर पीज होते हैं वो बी आर सी से जुड़े होते हैं, वो आएंगे उसमें। उसमें डी सी आएंगे और उसमें डीसी हैं, एआरपी हैं और बीओज जो हैं वो सब होते हैं, क्योंकि बीओ अपनी बीआरसी को भी देखते हैं, एआरपी जो हर स्कूल में जाते हैं वो हर टीचर से इंटरेक्शन रखते हैं, तो उन सब की मंथली मीटिंग के दौरान वो अपना आउटपुट देते हैं कि उन्होंने क्या किया, जो हमें पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी थी तो वो कहाँ तक हुई हैं, कितना परसेंटेज वो सक्सेसफुल हुए हैं, कितना अभी बचा हुआ है वर्क, वो सारी उस दौरान डिस्कशन होता है।
अच्छा मैम, और मैम आपके डाइट में लेक्चरर से कैसी इंटरेक्शन होती है, कैसा सपोर्ट आपको उनसे चाहिए और उनको आपसे चाहिए?
देखिए, लेक्चरर्स एज अपकमिंग मतलब मैं हमारा प्रोबेशनरी पीरियड ही अभी चल रहा है।
अच्छा।
तो हम भी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं।
अच्छा।
और इसमें लेक्चरर्स जो हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो हमें चीज़ें कैसे होनी चाहिए, यहाँ की लोकल नीड्स क्या हैं, यहाँ की स्कूल्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उसमें किस तरह के हमें रिफॉर्म्स चाहिए, क्या हम और रिसर्च कर सकते हैं, तो वो सारी उनसे सपोर्ट मिलता है और वो देते हैं उस तरह का हमें, तो काफ़ी अच्छा।
प्री सर्विस को आप देख रही हैं तो आप उसमें क्या देखते हैं एग्जैक्टली? मतलब क्लास विजिट करती हैं, ये डीएलएड की जो हो रही है
उसमें ये इनकी क्लासेस प्रॉपरली चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, या बच्चों की अटेंडेंस प्रॉपर है या बच्चों की अटेंडेंस कम आ रही है तो क्यों आ रही है, तो क्लास टीचर्स के साथ फिर हम पूछते हैं सारे इश्यूज को. जैसे अभी यूटी चल रहे हैं
जी, जी,
तो इस तरह की चीज़ें सारी देखना होता है.
तो मैम अभी जो डीएलएड का कोर्स चल रहा है उसमें आपको क्या लगता है मेजर अभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स या फिर इश्यूज है जिस पे आपको सपोर्ट चाहिए होगा?
हाँ, मुझे लगता है कि जैसे डीएलएड वाला है ये, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी मतलब वो नहीं है रही है, अब धीरे धीरे बच्चों में क्रेज़ कम होता जा रहा है
जी मैम,
तो ये एक बड़ा इशू है. अब इससे बेटर ऑप्शन ये है हमारे लिए कि हम या तो कोई एक 4 इयर्स जैसे बीएड है इस तरह का कोई हम यहाँ पे कोर्स स्टार्ट करें जो बच्चों को आगे हेल्पफुल. एक दूसरा इसमें जो फाउंडेशन कह सकते हैं, हर्डल कह सकते हैं, कि ये प्राइमरी लेवल तक ये सीमित है, 8th तक के आप टीचर्स बन सकते हो, जबकि बीएड करके वही 2 इयर्स में आप 12th तक हो तो आपके पास ऑप्शन उधर ज़्यादा हैं. तो बच्चे जो है ना वो उधर की तरफ ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है बच्चों का, तो ये इस चीज़ पे थोड़ा गवर्नमेंट को, जो मुझे लगता है हम लोग अगर पूछा जा रहा है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह का कोर्स हो जो आगे आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग सही हो, तो उसमें हम एक 4 इयर्स बीएड का कोर्स इंक्लूड कर सकते हैं.
बिल्कुल मैम.
मैम जैसे आप प्री सर्विस देखती हैं तो यहाँ के लेक्चरर्स और जो बच्चे हैं डीएलएड के बच्चे हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन आपने ऑब्जर्व किया अभी तक?
नहीं, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी सच में कि टीचर्स जो हैं वन फोर्टीन के अराउंड हमारे सेकेंड सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी अच्छे नंबर है स्टूडेंट्स का. टीचर्स मतलब हर स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली पहचान रहे हैं बाय नेम भी और बाय कि वो बच्चा उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं या कहाँ वो बच्चा थोड़ा लैक कर रहा है. तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ की टीचर्स की कि वो जानते हैं और वो बच्चे को ऐसे ही फिर ट्रीट, जैसे मैंने कुछ बच्चों को पर्सनली भी देखा है, कुछ फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं तो उन बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीड भी चाहिए होती है कि हम उनमें थोड़ा अटेंशन दें और साथ ही उन बच्चों के साथ हमारा बिहेवियर भी एक ऐसा नहीं कि एवरेज क्लास की तरह हो, थोड़ा उन्हें हम एक्स्ट्रा उन्हें थोड़ा ज़्यादा मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है, तो उस हिसाब से यहाँ किया जाता है.
बिल्कुल.
और अगर मुझे कहीं कमी लगती है तो मैं उनसे बोलती हूँ फिर कि इनको थोड़ा सा स्पेशल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट करें.
तो मैम जो एनजीओ है यहाँ पे उनके लेक्चरर्स भी पढ़ाते हैं क्लासेस में, तो आप वो क्लासेस भी ऑब्जर्व करती है देखती है, तो ऐसा कोई डिफरेंस समझ में आता है आपको डाइट के टीचर्स में और एनजीओ के टीचर्स में,
मतलब उनके क्लासेस में जब क्लासेस हो रही होती हैं तो पढ़ाने के तरीके में या जो भी टॉपिक्स वो लेते हैं मतलब टॉपिक कैसे कंटेंट में वो कुछ और पढ़ा रहे हैं, वो वही चीज़ अलग ढंग से पढ़ा रहे हैं, कुछ नया ही पढ़ा रहे हैं, उसमें अगर आपको कुछ फ़र्क दिखाओ?
नहीं, अभी मैंने ऐसा सच तो नहीं, लेकिन हाँ कंप्यूटर में मुझे लगा कि क्योंकि हमारे यहाँ पे कंप्यूटर का कोई लेक्चरर नहीं है
जी,
तो कंप्यूटर में हम पूरी तरह से उन्हीं पे डिपेंड हैं और उन्होंने जो लैब प्रोवाइड की है दैट इज़ वेरी गुड इनिशिएट डन बाय देम, तो बहुत अच्छा था. हमारे स्टूडेंट्स की नीड इससे फुलफ़िल हुई है. कुछ सब्जेक्ट्स हैं पर्टिकुलर, जैसे वो सब्जेक्ट बच्चों के हैं बट उनके लिए कोई स्पेसिफिक लेक्चरर नहीं है, टीचर नहीं है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं चीज़ें कि हम किसको कहें कि कौन उसकी क्लासेस लेगा. तो ऐसे में हमें लोगों की भी बड़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है, जैसे संस्कृत में हमें बहुत अच्छी हेल्प मिली है इन लोगों से, कंप्यूटर में मिल रही है.
तो मैम जैसे आप अभी आई हैं डाइट में तो आपको मतलब कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स या कुछ ऐसी सपोर्ट की मतलब रिक्वायरमेंट है कि जो आपके काम करने में और मदद कर सके?
डेफिनेटली, क्योंकि ट्रेनिंग ऑलवेज अच्छा इम्प्रूवमेंट लाती है पर्सनालिटी में, तो ट्रेनिंग अगर हमारी भी ट्रेनिंग्स टाइम टू टाइम होती रहें तो अच्छा है, नई नई चीज़ें हमें भी सीखने को मिले.
मैम होती है वैसे कई मतलब
हमारी ट्रेनिंग SCRT मतलब CMAT में हुई थी शुरू में, लेकिन वो थोड़ा कम टाइम था, मतलब 4 डेज़ की ऑफलाइन थी और फिर रेस्ट जो थी हमारी 10 डेज़ की वो ऑफलाइन थी ड्यू टू कोविड, हमारी वो बीच में बंद हो गई थी.
अच्छा, उसके बाद से कुछ
उसके बाद नहीं हुई है, तो ट्रेनिंग होनी चाहिए. ट्रेनिंग अच्छा है, फील्ड में जाके सीखने को मिलता है तो वो बहुत अच्छा है.
मैम ऑनलाइन मोड में जो आपकी मीटिंग्स हुई हैं और ट्रेनिंग्स हुई हैं उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस था?
देखिए अगर मैं ऑफलाइन से कंपैरिजन करूँ तो डेफिनेटली ऑफलाइन ज़्यादा बेटर रहता है. ऑफलाइन में क्योंकि एक बॉन्डिंग बनती है चीज़ों को, फेस टू फेस हम वो चीज़ें भी पूछ सकते हैं. कभी एनवायरमेंट ऐसा होता है कि लेकिन ऑफलाइन में, ऑनलाइन में क्या है कि एक सर्टेन पॉइंट्स में उसमें चलती रहती है वो रिदम में, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स. फिर एक नेट की इशूज कहीं कहीं आ जाते हैं, कुछ कहीं माइक खुल रहा है तो बीच में डिस्टर्बेंसेस. तो ये
मैम एज अ सीनियर लेक्चरर आपको किस चीज़ में और सपोर्ट की ज़रूरत है?
एज ए सीनियर लेक्चरर, एज ए सीनियर लेक्चरर तो मुझे अपनी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब ऐसा नहीं. लेकिन हाँ, जैसे डाइट में है कि डाइट जैसे एकेडमिक बॉडी है
जी,
और हम एकेडमिक बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जैसे हम निरीक्षण के लिए जाते हैं स्कूल्स वगैरह में,
इंस्पेक्शन
के लिए, तो इंस्पेक्शन के टाइम हम देखते हैं जैसे कुछ चीज़ें अगर हमें सही नहीं लगती तो उस टाइम हमारे पास एज राइट नहीं है उस तरीके से.
हाँ जी.
क्योंकि हमारी ये जो एकेडमिक जो बॉडी है हमारी बीएससी वाली, तो उसमें और डाइट में थोड़ा एक गैप है इन चीज़ों को लेके, तो वो गैप थोड़ा कम होना चाहिए ताकि अगर हम जा रहे हैं इंस्पेक्शन पे और हम कोई चीज़ गलत देख रहे हैं तो हम उस चीज़ पे या तो एक्शन ले सकें या उस तरह से उन चीज़ों को थोड़ा हमारे पास इस तरह का राइट हो कि हम इम्प्रूव करा सकें.
अच्छा.
तो हमारे पास उस तरह का राइट नहीं है डाइट के पास.
तो मैम आप तो वो आपको वो ऐप फिल करना होता है, तो आप बोल रही है कि उस मतलब वो फिल करके तो वो जाता है एससीईआरटी के पास, डीजी के पास, लेकिन उससे एक्शन आपको नहीं मिलता है, रेजोल्यूशन सोल्यूशन नहीं मिलता है उस प्रॉब्लम का.
उससे हमें ये नहीं पता कि उस पर एक्शन लिया गया है या उस रिपोर्ट को कैसे देखा गया है या उस पर क्या किया गया है. हमने जो प्रॉब्लम बताई है उस पर क्या मतलब डायरेक्ट एक्शन कुछ हुआ है या कोई इम्प्रूवमेंट किया गया है उस स्कूल के उस चीज़ पे, तो उससे हम अनअवेयर रहते हैं.
अच्छा.
ये चीज़ है
तो मतलब वो जो
जैसे हमारा बॉडी है वो. हाँ, मैं एक आपको छोटी सी चीज़ें समझा दूँ. अगर सपोज हमने मिड डे मील में कुछ देखा वहाँ पे, तो हमें थोड़ा लगा कि फूड क्वालिटी इज़ नॉट सच एज की जैसी होनी चाहिए बच्चों को, तो ठीक है हम उसमें फिल करेंगे कि फूड क्वालिटी ये है, लेकिन हमारे पास उसमें बड़े लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं. हम पूरी तरीके से हर चीज़ नहीं लिख सकते हैं. वो हो गया. फिर हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हमने प्रिंसिपल सर को बोला और प्रिंसिपल सर ने स्कूल को बोला या वहाँ पे स्कूल की प्रिंसिपल है उन्हें कुछ सजेशन दिया. फिर क्या है कि हम बीएससी ऑफिस पे डिपेंड हैं कि बीएससी ऑफिस वहाँ पे कोई कार्रवाई करे या उन पे कोई इम्प्रूवमेंट करे. तो ये जो एक गैप है ना, ये गैप थोड़ा कम होना चाहिए.
तो वो आपको, आप बीएससी से भी पूछ नहीं सकते कि क्या हुआ है?
नहीं,
क्या
नहीं पूछ सकते हैं हम. लेकिन एक है ना कि जैसे ऑनलाइन अगर प्रोसेस है तो क्या हो रहा है, या तो हमें ऑनलाइन पता हो कि इस पे क्या एक्शन लिया गया, तो एक बड़ा लंबी सी जर्नी हो जाती है कि लेटर इधर से गया फिर उसका जवाब कब तक आएगा.
बिल्कुल. तो मैम आपको लगता है कि डाइट जो है अगर उसको इंडिपेंडेंटली अगर हम फंक्शन करें तो बेटर कर पाएगा, या फिर आपको लगता है कि जो अभी हायरार्की बनी हुई है वो सही है, या आप थोड़ी और ऑटोनॉमी थोड़ी और
होनी चाहिए जो मुझे लगता है डाइट के पास. जैसे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का इंस्टीट्यूशन है और एक सिंगल इंस्टीट्यूशन है डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हम उस तरह से नहीं फंक्शनिंग हमारी हो पा रही है. तो जैसे एक हमेशा अकेडमिक जो बॉडी होती है वो बड़ा अच्छी रैंक मानी जाती है, लेकिन ऐसा इन प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है. और दूसरा चीज़ है जैसे कि ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग्स के शेड्यूल अभी मेनली अभी क्या है कि हमारे पास लेटर्स आते हैं, एससीईआरटी से आ गया है, पीएनपी से आ गया. डाइट क्या है, उन लेटर्स पे जो एक्शन लेता है डाइट वो कर रहा है. डाइट के पास अपनी कोई ऐसे प्रोग्रामिंग नहीं कि हाँ इस मंथ में हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस मंथ में हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब अपने आप हम ऑटोनोमस बॉडी की तरह नहीं,
वो डिसीजंस हम नहीं ले सकते.
अदरवाइज जैसे ये हो हमारे पास कि हम सपोज इस मंथ में इस ब्लॉक के इस टीचर्स को ट्रेनिंग दे दें, आगे इनको दे दें ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का शेड्यूल्स हो, फिर जो जो एक्टिविटीज़ हैं उसका शेड्यूल्स तय हम कर सकें. तो ऐसा नहीं, अभी क्या है कि लेटर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम वो वर्क करेंगे. अच्छा. अभी हमें वेट करना होता है कि ऊपर से ऑर्डर आए और हम उस पर वर्क करें.
तो मैम सारे ट्रेनिंग्स की ऑर्डर ऐसे ऊपर से आती है तभी होती है?
हाँ, ट्रेनिंग्स के
मैम अगर आप अपने सजेशंस देना चाहें कि एप्लीकेशन लिख गया जो भी प्रोसेस रहता है कि तू वैसे अगर करा सके तो एस सी आर टी को आप लेटर लिखें कि हम इस पर कराना चाहते हैं, उधर से अगर कुछ जवाब आए
हो सकता है।
तो मैम फंडिंग मतलब जैसे आती है तो उसमें भी आपका कुछ से रहता है
डाइट का?
हाँ डाइट में जैसे बजट आता है तो उसका मतलब आप सजेशंस दे कि इस जगह मतलब हमें ये रिक्वायरमेंट्स है,
इतनी बजट की जरूरत है,
वो डिमांड्स फिर आगे
एससीईआरटी पूछता है।
अच्छी
चीज़ें पूछी जाती है सीआरटी टाइम बाय टाइम कि आपको कितना कहाँ पे कितना बजट चाहिए। अभी जहाँ तक मुझे ध्यान है जब मैं प्रिंसिपल थी तो उस टाइम भी ऐसा एक लेटर आया था, तो इस तरह से वो पूछते हैं कि कितना एस्टीमेट आपको चाहिए होगा, तो लेते रहते हैं इस तरह के। एक और छोटा सा मैं इम्प्रूवमेंट अगर करना है या कोई रिफॉर्म किए, एक थोड़ा सा यहाँ पे सैलरी वाला इशू है कि सैलरी पर मंथ नहीं आती है
जी।
तो वो एक बड़ा इशू है, हमें अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको इनक्रेज करने के लिए मोटिवेट करने के लिए सबसे ज़रूरी बेसिक चीज़ है। आदमी हर टाइम ये सोचता रहे कि हाँ चार महीने सैलरी नहीं आनी है, तो ये इश्यूज भी थोड़े हैं।
तो हर महीने नहीं आती है फिर बहुत महीनों के बाद एक साथ आती
है? हाँ जैसे चार महीने की इकट्ठी आ गई चार महीने बाद, तो इस तरह से ये इशू है यहाँ के। जैसे स्टाफ से बात करते हैं तो थोड़ा रहता है उससे, थोड़ा डीमोटिवेशन रहता है लोगों के।
ये सबके लिए होता है?
हाँ सबके लिए, पूरे डाइट के स्टाफ की एक साथ निकलेगी फिर वो
प्रिंसिपल सर की।
हाँ हाँ सबकी डाइट में जो भी है।
तो मैम जैसे मैम बता रही थी फंड वो बजट के बारे में, तो आई एम श्योर लेक्चरर्स आप से आके बताते भी कि इस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन क्या प्रिंसिपल सर को देते हैं फिर वो एस सी आर टी को बताते हैं फिर कैसे
प्रिंसिपल सर इन्फॉर्मेशन लेते हैं ये जिस टीम को उन्होंने वर्क दिया है कि वो इस डेटा पे काम करें कि कैसे कैसे बजट का, फिर वो टीम अपना जो भी उसकी रिपोर्ट है वो रिपोर्टिंग करेंगी प्रिंसिपल सर को और फिर वो लेटर सेंड करेंगे एससीईआरटी को। थोड़ा हाँ हाँ एक चीज़ और है, जैसे डाइट में हमारे पास 7 डिपार्टमेंट्स हैं
जी,
लेकिन हमारे वो 7 डिपार्टमेंट्स जो हैं उस तरह से फंक्शनिंग में नहीं है।
अच्छा।
कि जैसे पर्टिकुलर प्री सर्विस है इन सर्विस है, उसमें कुछ लेक्चरर्स की मतलब उसमें एक टीम होगी
जी,
टीम
जी,
ये वर्क करेगी ये टीम वो वर्क करेगी, तो ऐसा कोई वेल डिफाइंड उससे चल नहीं रहा है डाइट। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि उस तरीके से अगर वेल डिफाइंड तरीके से अगर डाइट चले तो उससे जो आउटपुट है ना वो और इनहेंस होगी, अच्छी आएगी।
मैम और कुछ है जो आपको लगता है कि बेहतर हो सकता है?
न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके डाइट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो जैसे अभी हमारे यहाँ पे क्या है हम 8th गवर्नमेंट के 8th तक के स्कूल्स जो हैं पर प्राइमरी उनके टीचर्स की ट्रेनिंग हम कराते हैं। मुझे लगता है कि इसमें जो माध्यमिक वाला है वो भी अगर इंक्लूड हो जाए कि ये भी हो और माध्यमिक के भी टीचर्स हो, तो ये जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का इसका जो कॉन्सेप्ट है शायद और बेहतर तरीके से करें।
बिल्कुल मैम और कुछ है जो आपको जनरली हमें बताना हो जो हमारी स्टडी के लिए हमको मदद कर पाए?
इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी जैसे बेसिक चीज़ें हैं जैसे वॉशरूम्स है, हाइजीन वाला जो इश्यूज़ है स्पेशली वुमेंस के जो वर्कर्स हैं उनके लिए, तो वो एक बड़ा इशू है।
बिल्कुल
वो होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा इशू है यहाँ पे, लाइट नहीं है, वाईफाई नहीं है, तो ये बड़े ड्रॉबैक रहते हैं। जैसे ऑनलाइन मीटिंग चल रही है और फ़ोन का डेटा अगर कोई इशू हो जाए तो ये मतलब हाँ, और जबकि हम एज ए इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो ये बड़ी बहुत ही बेसिक चीज़ें।
बिल्कुल मैम ठीक है मैम, थैंक यू सो मच।